خدا کو بھی اپنی زندگی میں لے آؤ، خدا کو بھی آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں اپنے کاموں میں لاؤ، اور کچھ کام خدا کے لیے بھی کرو جس نے تمہیں مجھے ہم سب کو خلق کیا، سب کچھ دیا. کون سی چیز ہے جو خدا نے ہمیں نہیں دی؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کا عطا کر رہے ہیں. وہ بھی ایک دور تھا، بارہ میں ان کا اپنا ایک انداز تھا، اپنا ایک طریقہ کار تھا. میں اپنے اس سادہ سا انسان اور سادگی کے ساتھ آپ کی خدمت کر سکتا ہوں. آئیے خدا مدد سے محبت کرتے ہیں. میرا اور آپ کے طور سے امام فرما رہے ہیں کہ الہی من اللہ کی ذات علاوہ کا محبت ایک فرام ان کا پیدا ہے. اور ہمارا کام بھی یہی بنتا ہے، کیونکہ خدا مدد نے جناب موسیٰ علیہ نبینا و آلہ و علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یا موسیٰ حببنی و احبب الی خلقی، کہ اے موسیٰ مجھ سے محبت کرو اور میری خلق کو بھی مجھ سے محبت کرواؤ. میری خلق کو بھی کہو کہ وہ مجھ سے محبت کریں، خود بھی محبت کرو اور خلق کو بھی کہو کہ وہ بھی مجھ سے محبت کریں. جناب موسیٰ علیہ نبینا و آلہ علیہ السلام نے عرض کیا، پالنے والے میں تو تجھ سے محبت کروں گا، تو نے مجھے حکم دیا ہے میں تیرے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن لوگوں سے میں کیسے محبت کروں؟ لوگوں کو میں کیسے کہوں کہ وہ تجھ سے محبت کریں؟ تو ارشاد ہوا کہ لوگوں کے سامنے میری نعمتوں کا ذکر کر کے انہیں مجھ سے محبت کرا. سلام میں کل ہم علماء کے خادم ہیں، روایت ہے کہ علماء امتی علماء انبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور میں خادم میں علماء ہونے کے ناطے سے عرض کروں کہ ہمارا بھی یہی حق بنتا ہے کہ خود بھی خدا تعالیٰ سے محبت کریں اور لوگوں کو بھی محبت پروردگار عالم کی تعلق دیں. کہتے پاگول نانا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک بار بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کی چہل پہل تھی، خرید و فروخت ہو رہی ہے، بازار کا کاروبار اپنے عروج پر تھا. تو گزرنے والے نے جب دیکھا کہ بہلول بھی بازار میں بیٹھے ہیں تو اس نے کہا چلو تھوڑا شوگر لگاتے ہیں، پوچھا بہلول آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں تو دنیا کے لوگ آتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ تو دنیا تک جا چکے ہیں، یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا خلق اور خالق کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. خلق اور خالق کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. مزاق میں کیوں مزاق کر رہے ہیں؟ مزاق کیوں کی بات کی؟ کہا پھر آپ کی یہ کوششیں کہاں پہنچی؟ یہ جو آپ خالق اور مخلوق میں صلح کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کوششیں کہاں پہنچی؟ فرمایا کہ خالق تو مان رہا ہے پر مخلوق نہیں مانتی. خالق صلح کرنے کے لیے تیار ہے لیکن مخلوق صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، مخلوق نہیں مانتی. ایک فریق راضی ہے، دوسرا فریق راضی نہیں. گزر گیا اس نے کہا سے شروع لگایا اور اپنے کام شروع بھی چلا گیا. کچھ دن گزرے تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں. تو کہا چلو پھر تھوڑا شور لگاتے ہیں. پوچھا بہلول یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہی کام جو اس نے بازار میں کر رہا تھا، وہی کام آج قبرستان میں کر رہا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا وہاں پہ بھی خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کی کوشش کر رہا تھا، آج بھی خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کی کوشش کر رہا ہوں. کہا اچھا، اس دن تو آپ نے کہا تھا کہ خالق مان رہا ہے اور مخلوق نہیں مان رہے، آج تو آپ کوشش کر رہے ہیں، آج آپ کی کوشش کہاں پہنچی؟ کہا اب مخلوق مان رہی ہے، خالق نہیں مان رہا. اب مخلوق صلح کرنے کے لیے تیار ہے لیکن خالق کہتا ہے کہ اب صلح کا وقت. عزیزوں، ہم جس جگہ بیٹھے ہیں ابھی وقت ہے ہمارے پاس خالق کے ساتھ صلح کرنے کا، خالق کے ساتھ آشتی کرنے کا، خالق کے ساتھ محبت کرنے کا، خالق کے ساتھ اپنا رابطہ بہتر کرنے کا. اور اگر یہ وقت چلا گیا اور ہم بھی قبرستان کی کسی کے قبر میں جا کے سو گئے تو پھر یہ وقت آدمی آئے. ہے اس وقت مخلوق میں تو مانوں گا لیکن خالق کہے گا جب تک سانسوں کا سلسلہ چل رہا تھا تب تک توبہ کی نوبت اور توبہ کی گنجائش تھی، اب جب سانس منتقل ہو گیا تو اب پھر توبہ کی گنجائش نہیں ہے، اب کسی صلح کی گنجائش نہیں ہے. سوال
اللہ
امام سجاد علیہ السلام کے بابا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کہ الہی ما لا وجد من فقد کا وملتی وجد من ملتی فقد من وجد کا، اے پالنے والے جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، جن ساری کائنات کی خواہش تو اگر اسے مل گئی لیکن خدا اگر اسے نہیں ملا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی نظر میں کچھ نہیں پایا، دنیا سے خالی ہاتھ چلا گیا، سب کچھ عادت کیا دنیا کا لیکن خالی ہاتھ ہے، اور اے پالنے والے ملتی فقد من وجد کا، جس نے تجھے پا دیا اس نے کچھ بھی نہیں تو پایا، اگر سب کچھ اس پیار سے چلا جائے، عزت شہرت مال دولت اولاد بیوی بچے گھر بار وطن اور یہ ساری چیزیں آپ کو امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں نظر آئیں، ساری چیزیں سب کچھ اس پیار سے چلا جائے لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا، ترکت الخلق ترن فی ہوا، پالنے والے میں نے ساری خالق خدا ساری تیری مخلوقات جو بھی تو مجھے دیا تھا سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، ترکت الخلق ترن یعنی سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، فی ہوا تیری محبت، سب کچھ چھوڑ دیا نا مال نے عملی طور پر یہ کام کر کے دکھایا، سب کچھ چھوڑ دیا تیری محبت میں، وہ نم تو آیا لیکن خراب اور اپنے آل اور رات کو بھی میں نے یتیم کر دیا تاکہ تیری بارگاہ میں سخروس تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکے، کون سی چیز ہے جو مظلوم کربلا نے خدا کی راہ میں قربانی نہیں اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور یہ کیا تھا فی ہوا تیری محبت میں، سب کچھ محبت میں ہی انسان ایسے بڑے بڑے قدم اٹھا سکتا ہے، اگر محبت نہ ہو صرف ایک عقلی رابطہ ہو خدا و خدا کے ساتھ کہ عقل کہتی ہے کہ اس کی طاعت واجب ہے، عقل کہتی ہے کہ اس کی عبادت واجب ہے، عقل کہتی ہے کہ اس کی نافرمانی حرام ہے، صرف ایک عقلی رابطہ ہو، عقلی رابطے والا مسلمان کبھی اتنی قربانیاں نہیں دے سکتا، مکتب تشیع شروع سے لے کر آج تک مسلسل قربانیاں دے رہا ہے اور ہر روز اس کی قربانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود بھی یہ مطلب پڑھ رہے جا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ اگر صرف عقل کی حد تک ہم مطلب اپنے شہریوں کی حقانیت کے قائل ہوتے تو کب کا یہ مطلب چھوڑ کے چلے گئے، صرف عقل کی حد تک اگر انسان مطلب اپنے شہریوں کا قائل ہوتا تو کب کا یہ مطلب چھوڑ کے چلا نہیں ہوتا، یہ عقل کے ساتھ ساتھ محبت یہ جو دین سے محبت ہے، یہ جو آل بیت علیہ السلام سے محبت ہے، یہ محبت ہے جو ہمیں اتنی ساری مشکلات کے باوجود اس مقصد سے دور، کہتے ہیں اسلام آباد میں ایک میٹنگ تھی، قائد شہید علامہ عارف حسین حسینی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سربراہی میں میٹنگ ہو رہی تھی اور علاقے کے لوگ سب اکٹھے تھے، اس میں ہمارے علاقے کے بھی دو تین افراد دیے ہوئے تھے، تو ہمارے علاقے کے ایک صاحب نے ان دنوں کچھ مشکلات تھی جلوس کے حوالے سے اور خطرات تھے، تو انہوں نے اس کے 15-20 منٹ کہتے ہیں لمبی چوڑی تقریر کی اور جس میں بڑا واویلا کیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، انتظامیہ ایسے کر رہی ہے، حکومت ویسے کر رہی ہے، لوگ اس طرح اس طرح، اور جس ہمارے جتنا وہ مشکلات کا وہ پٹارا تھا سارا کھول گیا، تو مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، جب وہ ساری اپنی جیب کی بڑھاس نکال چکے اور قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی باری ہے جب جواب دیں تو بڑا مختصر اور بڑا خوبصورت اور بڑا سادہ سا جواب دیا، انہوں نے کہا شاہ صاحب اگر واقعی آپ نے مشکلات سے گھبرا گئے ہیں اور یہ مشکلات کا آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا تو ان کا حل بہت آسان ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ حل کیا ہے، وہ حل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی چھت سے الگ سے حضرت عباس ہوتا صرف ایک آپ اپنے گھر کی چھت سے الگ حضرت عباس کو اتر الملاؤ الملاؤ جو محبت کرتے ہیں محبت کے رستے میں جو کام کرتے ہیں محبت کے رستے میں جو مشکلات تو آتی ہیں محبت کے رستے میں پریشانیاں تو پھر آتی ہیں، اگر محبت کرنی ہے تو پھر مشکلات اور پریشانیوں کو اوپر بھی سب کرنا ہوگا گزارا کرنا ہوگا، کہتے ہیں بہت خوبصورت کسی نے مثال دی یہ جو گھوڑوں کی ریس لگی ہوتی ہے نا گھوڑوں کی ریس لگی ہوتی ہے تو کون سا گھوڑا زیادہ جیتتا ہے، एक तो खुद वो तवाना हो, दूसरा उसके ऊपर जो बैठा होता है, जो जितने ज्यादा चाहो मारे ना उसे, जितना ज्यादा उसे वो मारेगा वो उतना तेज भागता है। अब घोड़े को वो घोड़ा जीत जाए उससे नहीं पता जीत क्या है क्या नहीं है, उस वो भाग रहा होता है। क्यों भाग रहा होता है? क्योंकि उसको उसके मालिक की तरफ से, जो उसकी पुष्ट पर बैठा है उसकी तरफ से उसे तकलीफ आ गई होगी, तकलीफ आ गई होगी, वो तकलीफ की वजह से भाग रहा होता है। ऐसे ही होता है ना, तकलीफ की वजह से भाग रहा होता है, जितना पीछे उसको इसमें मारता है वो उतना तेज घोड़ा बनता है, उसे नहीं पता जीत क्या है। और जो मार वो बर्दाश्त करते रहते और भागता रहता है, रुक नहीं जाता, रुक ये नहीं पीछे मुड़ के कहता है क्यों मार रहे मुझे, जो घोड़ा रुक गया फिर वो देर से ही खाने जाता है। जो घोड़ा भागता रहता है भागता रहता है, आखिर जीत जाता है, तो उसे नहीं पता होता जीत क्या है क्या नहीं। इसी तरह है मेरे अजीजों, हमारे ऊपर भी जो कुदरत की तरफ से मुश्किल आए, परेशानियां आए, रुकावटें आए, ये सब इसलिए है कि हम जीत जाए। मेरे और आपके जीतने के लिए खुदा चाहता है जीते हैं, और जिन्होंने जीतना होता है, जिन्होंने आगे बढ़ना होता है, उन्हीं के रस्ते में मुश्किल आते हैं। जिन्होंने तरक्की नहीं करनी, जिन्होंने ऊपर नहीं जाना, उन्हें जामन करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए मुश्किल भी पेश नहीं आती। सब आप वो कहते हैं मौलाना साहब थे, सबसे बुरे थे, पहले मकतब तशय्यु से उनका ताल्लुक नहीं था, बाद में मकतब तशय्यु हुआ उसकी अकादमी देखकर उन्होंने कबूल किया। तो जब मुस्तबसे हो गए, आज बैठ के रस्ते पर आ गए, तो कुछ अर्सा गुजरा कि उनका वो पुराना साथी उनको मिला, उसने कहा मुलाकात हुई, उसे पता चला कि इन्होंने अपनी डायन तब्दील कर दी है। उसने आज कहा भाई इधर से लेके उस फिर को अपना लिए तो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज जो दीन की अलामत है, कुल्ले शहीद वज वज दीन है, वो सलात पैगंबर के अजीज है, हर चीज का एक चेहरा होता है, चेहरे से इंसान की शिनाख्त होती है ना, चेहरे से इंसान पहचाना जाता है कौन है कौन नहीं है, तो हर चीज का एक चेहरा होता है। तुम्हारे दीन का चेहरा तुम्हारी नमाज है, यानी तुम कितने दीनदार हो उन्हें तुम्हारी नमाज से पता चलेगा। जितना ज्यादा कुछ भी हो, के साथ इजलास के साथ एहतमाम के साथ तवज्जो के साथ तुम नमाज पढ़ते हो, उतना ही पता चलेगा तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हें दीनदारी कभी है मजबूत है। तो ऐसे लोगों में शामिल हो गया, ऐसा दीन तुमने अपना लिया। अब ये मौलाना साहब ने चेहरे ने उसको जवाब तो देना था, और जाहिर तौर पर एतराज भी था, वो वालिद भी था, कहते इन्होंने हाजिर जवाब दे, फौरन इनके जहन में आया, उन्होंने कहा कि यार ये जो बात तुमने कही है ये मैं नहीं सुनता था, किताबों में देखें अजीजा के अतबार से देखें तो ये मकसद हक नजर आता है, सही है, लेकिन इस अतबार से देखें बड़ा होता है, नमाज के अतबार से बुनियादी तरीन फुरू दीन में सबसे पहली चीज है अमल का आगाज ही नमाज से होता है, उसका वाक्य बड़ा होता है। तो इन्होंने क्या जवाब दिया उसे, इन्होंने कहा कि मैं भी ये सवाल ले रहे हैं, मैं थोड़ी परेशानी और टेंशन थी मुझे, ये क्यों नहीं कम नमाज की तरफ तवज्जो करते हैं, हम लोग ज्यादा करते हैं। कहते मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में शैतान को देखा, तो मैंने कहा इससे पूछता हूँ, क्योंकि जो नमाज नहीं पढ़ते तो शैतान ही होता है, और जो पढ़ते हैं उनके लिए वो नमाज को सबसे खड़ी नहीं करता। कहते मैंने इससे सोचा कि इससे पूछू शैतान, मैंने कहा यार तुम ये मदद हक वाले हैं, इनको तुम नमाज से क्यों रोकते हो, उधर नहीं रोकते। उसने कहा इसका जवाब बड़ा आसान सा है, इसका जवाब बड़ा आसान है जी, क्या जवाब है? कहा इनकी नमाज कबूल होती है, इनकी नमाज कबूल होती है, जो नमाज पढ़ते हैं वो खालिक अकबर चाहते हैं, वो जो नमाज है कि होते आ जाए उस नमाज से कबूल होना नहीं, वो पढ़े या ना पढ़े एक ही बात है, इसलिए उनको मुझे रोकने की क्या जरूरत है, पढ़ते तो पढ़ते हैं, जो नमाज असर रखती है, जो तनहा इन बादशाह का मुकर है, जो मेराज मोमिन है, जिसके नमाज के इतने असरात हैं, वो नमाज है, वो एक ही नमाज है, ये पढ़ेंगे तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी होती है और मैं पसंद नहीं करता, इसलिए मैं क्यों रोकता हूँ। सब आपने समझ करने का मकसद यही था कि जो नमाज काम की नमाज होगी उसमें शैतान आपके रुकावट कर दिया, जो दीन काम का दीन होगा हकीकी दीन होगा उसके मानने वालों को हटाने के लिए वो मुख्य मसाले इस्तेमाल करेगा, अपने शयातीन को भी इस्तेमाल करेगा और इंसानों में जो शयातीन है उनको भी, अपने साथ मिलाकर उनको भी इस्तेमाल करेगा। अचानक कि ये मोहब्बत है जिस वजह से हुकूमतों के खजाने खर्च हो के खत्म हो गए, हुकूमतों की ताकतें खर्च हो के इस्तेमाल हो के हुकूमतें मिट गई, लेकिन मकसद के तशय्यो को न सिर्फ ये मिटा नहीं सके बल्कि रोज रोज के मतलब आप देख रहे हैं आपके और मेरे हमारे सामने रोज रोज के मतलब फैल रहा है और ये खुद खुद फैल रहा है। इससे मैं नहीं फैला रहा, ये भी एक हकीकत है कि जो मेंबर यहाँ बैठते हैं अपनी बातें इस मतलब को उस तरह से जिस तरह से फैलाना चाहिए या फैलाना होना चाहिए उस तरह से वो काम नहीं हो रहा। अब तो उसकी मुझे कोई जवाब है, कोशिश हो रही है लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा। अब जब कौन बैठे तो आयतुल्ला अहमदी मियांजी रहमतुल्लाह ताला अलैह और आयतुल्ला अली मिश्किनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये दोनों आपस में मुबारक भी थे, दोस्त भी थे, दोनों से ये बात हमने सुनी ना हुई है कि वो हमें कहते हैं रहमतुल्लाह को मुखातिब होकर कि आयतुल्लाह आप जब अपने इलाकों में जाएं अपने मुल्कों में जाएं जब फारिग होकर यहाँ से तो हम आपको ये नहीं कहते कि दीन फैलाएं, हम आपको ये तवज्जो कीजिएगा क्योंकि उनका 20 साल का तजुर्बा होता है। वो कहते थे हम आपसे ये नहीं कहते आप दीन फैलाएं बल्कि हम आपसे ये कहते हैं कि दीन के फैलने में कोशिश करें आप रुकावट ना बने। तालिबात कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के फैलाने में आप रुकावट न बने। क्यों? क्योंकि तालिबात कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम ये दूर है और दूर को फैलाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, दूर को ढांक के आप छुपा दें वो मसला बन जाए, तो आप रुकावट न बने, बस जो कुछ है उसको ध्यान करके फिर देखिए लोगों के दिलों में किस तरह से ये बातें उतरती चली जाए। जहां पर भी दिल होगा जहां पर भी इंसानियत पाई जाएगी वहां पर ये बातें असर करेंगी और जहां पर दिल नहीं होगा बल्कि उसकी जगह पत्थर होगा, जहां पर इंसानियत नहीं होगी उसकी जगह हैवानियत होगी, जो कुछ मिले जहां से मिले बस जेब में डाल अपने पेट की जेब होगी वहां पर अगर ये बातें असर नहीं करती। मैं तुम्हें इमाम मासूम भी अगर आकर नसीहत करे मानोबाज करे वो भी असर नहीं करता और अपने का बना के मैदान में देखा। दादा जो मुझे याद आ रहे हैं एक बात नहीं, आशूर के दिन इमाम आले मुकाम अलैहिस्सलाम ने 4 तकरीरें और अपनी चौथी और आखिरी भी मशहूर मालूम तकरीर जिसमें कहा कि मैंने कौन से हलाल को हराम किया है, कौन से हराम को मैंने हलाल किया है, मैंने क्या किया है, तुम क्यों मेरे कत्ल कर रहे हो, मैं तुम्हें दीन की बात कहता हूँ, मैं तुम्हें अच्छाई की दावत देता हूँ, मैं तुम्हें सुन्नत रसूल की दावत देता हूँ, तुम उसके मुकाबले में सब जंग करते हो। उसके जवाब में हम क्या कहते हैं, बोझ ना लेना ठीक है, हमें बद रो बहुत का बोझ है, हमें वो बदले लेने हैं। उस वक्त पता है आपके मेरे इमाम ने क्या फरमाया था, इमाम ने फरमाया था मेरी नसीहतों का तुम पर असर इसलिए नहीं होता कि तुम्हारे पेट माल हराम से भरे। इंसान जिसको पेट की फिक्र हो माल की फिक्र हो बस कमाने की फिक्र हो जहां से मिले जैसे मिले जिस तरह मिले बस जेब में डालते हैं और कमाना है, ऐसा आदमी मैं तो एक कथाकार का इंसान हूं, इमाम मासूम भी आकर उसे अच्छी बात की नसीहत करे उसके ऊपर असर लेकिन जिस दिल में मोहब्बत आ जाए जिस दिल में मोहब्बत के परवरदिगार आलम आ जाए फिर वो सोचता है क्योंकि उसके नजर में सिर्फ और सिर्फ खुदा और खुदा होता है, फिर वो देखता है कि जो माल आ रहा है इस माल के देने पर मेरा रब राजी है या राजी नहीं, इस माल को अगर मैं ले लूं कि मेरा रब नाराज नहीं हो जाए, अगर उसे पता चले नाराज हो जाए वो कहते हैं ऐसा माल मुझे ये जो मेरी आल औलाद मुझसे ख्वाहिश कर रही है अगर मैं इसकी ख्वाहिश पूरी करूं कि मेरा रब इससे नाराज नहीं होगा, अगर नाराज होगा वो कहेगा मुझे आल औलाद का नाराज होना गवारा है लेकिन अपने रब का नाराज होना गवारा नहीं है, वो पूरी नहीं करेगा उसकी जिंदगी में फर्क आ जाएगा और जितना ज्यादा वो ऐसे काम करता चला जाएगा उसके दिल में परवरदिगार की मोहब्बत की शमा रोशन से रोशनता होगी और जितनी मोहब्बत बढ़ती जाएगी उतना ही उसका कुर्बानी का जज्बा भी बढ़ता जाएगा। और करबला वालों ने अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ये सारे काम हमें अमली तौर पर करके दिखाए हैं, उन्होंने ये कुर्बानियां देकर हमारे लिए जो एक बेहतरीन ऐसा रास्ता मुहैया किया है कि जिसकी कोई हद नहीं है इसके खूबसूरत रास्ते की, सब कुछ جو ہمارے لیڈر ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں بتایا کہ اگر تمہیں کل کسی مقام پر کسی قسم کی قربانی دینی پڑے تو تمہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان کے نقشے قدم پر چلنے والے ہو، تم ان سے محبت کرنے والے ہو، تمہیں اپنا سب کچھ اٹھا کے طرح تلخا تو مانسی ہوا، مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، سفر کی سہولتیں برداشت کی، خون دینا پڑا خون دیا، آبرو دینا پڑی آبرو دی، جو جس چیز کا مطالبہ کیا گیا مقام امتحان سے سب کچھ لگ رہا ہے، تم ان کے ماننے والے ہو، تم ان کے جانے والے ہو، اور جتنی زیادہ تکالیف اس رستے میں آئے، جتنی زیادہ اس رستے میں مشکلات آئے، یہ نعمت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، کیوں؟ کیونکہ یہ تکالیف، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں باعث بنتی ہیں کہ ہم روحانی اعتبار سے، مانوی اعتبار سے ہمارے مقام اور درجے میں بلندی آتی ہے اگر ہم نے قربانیوں، مشکلات کو، پریشانیوں کو سب سے کم کام کر رہے ہیں، اور باقی اگر جو اور دوسرے دنیاوی طریقے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اس پہ میں نفی نہیں کر رہا، وہ اپنی جگہ ہے، جو کچھ انسان اپنے ان مشکلات کے مقابلے میں دفاع کے طور پر جو کچھ کر سکتا ہے وہ سارے سلسلے الگ ہیں، اس سے کوئی فی الحال مزید بحث نہیں ہے، فی الحال یہ اندر کی بات کر رہا ہوں، دل کے اندر کیا ہونا چاہیے، اس رستے میں جو بھی مشکل پیش آئے انسان خوشی سے گلے لگا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا دل محبت پروردگار سے آباد ہو، سب آباد لیکن جن کے دلوں میں محبت پروردگار عالم نہ تھی، جن کے دلوں میں محبت پروردگار عالم نہ تھی، ایک تو وہ ہے کربلا کے سردار، جو کہتے ہیں ترقت الخلق تورم تھی ہوا، میں نے ساری خلق، ساری کائنات، ہر چیز تیری محبت میں میں نے چھوڑ دی، ان کے مقابلے میں جو آیا وہ کہتے ہیں چند ملاقاتیں میں امام علیہ السلام کی ظاہر کہتے ہیں، جس چند ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عمر ابن سعد کے ساتھ، ظاہر وہ آخری ملاقات تھی، کہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا اور اس کا غلام آیا، امام کے ساتھ امام کا بیٹا اور امام کا غلام، چھ افراد ٹوٹل بیٹھے تھے اس میٹنگ میں، امام نے اس سے فرمایا اما تتق اللہ، اے عمر ابن سعد تو اللہ سے نہیں کرتا، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں کون ہوں، کس کے مقابلے میں تو آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، عمر ابن سعد نے کیا جواب دیا، اگر دل میں محبت پروردگار عالم نہ ہو کیا جواب دیا، کہا کہ کوفے میں میرا ایک گھر ہے اور میں اس گھر کی نسبت کرتا ہوں، اگر میں آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا تو میرا وہ گھر گرا دیا جائے، امام نے فرمایا میں اس سے بہتر گھر تمہیں بنوا دوں گا، کوفے میں جیسا تمہارا گھر ہے اس گھر سے زیادہ اچھا گھر میں تمہیں بنوا دوں گا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا مال ہے، میری زمینیں ہیں، مال ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا مال اور وہ زمینیں مجھ سے چھن جائیں گی، اگر میں آپ کے مقابلے نہ ہوں تو میرا مال اور میری زمینیں مجھ سے چھن جائیں گی، امام نے فرمایا مدینے میں میں اس سے زیادہ تمہیں مال اور زمینیں عطا دوں، مدینے میں میں تمہیں اس سے زیادہ مال اور عطا دوں اگر چھن جاتے تو چھن جائیں، کہا جی اہل و عیال، میرے اہل و عیال ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، میں ان کے لیے کرتا ہوں، اب امام نے اس کے جواب میں کہا کہ تو قابل ہدایت نہیں، دل میں اگر محبت کے پروردگار عالم ہوتی تو نبی کا نواسا، نبی کا بیٹا، جوانان جنت کا سردار، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ جاؤ، جب نہیں آتی ہو محمد تو میرے مقابلے سے ہٹ جاؤ، نہ ساتھ ملنے کے لیے تیار ہے اور نہ مقابلے سے ہٹنے کے لیے تیار ہے، کبھی گھر کا بہانہ کرتا ہے، کبھی باہر دنیا کا بہانہ کرتا ہے، کبھی آج کا یاد کا بہانہ کرتا ہے، اور حقیقت میں سے وہ رہے شہر کی حکومت کی ڈالے، محبت پروردگار عالم نہ ہونا تو انسان ایسا ہو جائے، وقت کا امام بلا رہا ہے کہ میرے مقابلے سے ہٹ جاؤ یا میرے ساتھ گر جاؤ تو ماننے کے لیے تیار، امام نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں عراق کی گندم زیادہ آسان نصیب نہ ہو، یعنی کنایا ہے، بد دعا دی کہ بہت جلد تجھے بہت آ جائے، اور وہ مضمون جواب میں پتہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر عراق کی گندم نہ ملی تو میں جو گزارا ہے بتا دلایا تھا، امام دل میں مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، سارے کام کرتا تھا، مسلمان تھا، آنے قرآن تھا، سب کچھ تھا، سال ابن ابی وقاص بزرگ صاحب بھی ان کا بیٹا تھا، لیکن دل میں چونکہ محبت کے कबूल नहीं जब मना रहा था, जब दुनिया और खुदा की बात आई, दुनिया और आखिरत की बात आई, तो आखिरत तो खुदा को छोड़ दिया और दुनिया के पीछे चल अब्दुल्ला इब्ने उबय जो कि एक बहुत बड़ा माहिर घोड़सवार और नेज़ेबाज था, कूफे का रहने वाला, और जब इमाम अलैहिस्सलाम कूफे की तरफ तशरीफ ला रहे थे, रस्ते में मुलाकात हो गई, इमाम ने मुलाकात की और उसको दावत दी, आओ हमारे साथ शामिल हो, मोहब्बत की दुनिया की बात कर रहा हूँ आपकी, तो दिल में मोहब्बत के परवरदिगार ना हो तो क्या होता है। इमाम ने दावत दी, आओ हमारे साथ मिल जाओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ। उसने कहा मैंने कूफा इसलिए छोड़ा कि इस चक्कर में और इस फितने में मैं ना पड़ूं, मैं आपके मुकाबले में नहीं आना चाहता क्योंकि जानता हूँ आप पढ़े और आपके साथ भी शरीक नहीं होना चाहता कि मैं इस लड़ाई में नहीं पढ़ूंगा, चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। हाँ अल्लाह मेरा दिल आपके साथ है, मैं आपकी अफानियत में कायम हूँ, मेरा ये घोड़ा ऐसा घोड़ा है कि इस ऊपर मैंने जिस दुश्मन का पीछा किया मैंने इसको पकड़ लिया, इतना तेज रफ्तार में है, और मेरा ये नेजा ऐसा नेजा है कि पत्थर में भी मैं मारू थी, पत्थर में भी कर रहा है, इतना तेज है ये घोड़ा और ये नेजा हाजिर है, ये घोड़ा और ये नेजा हाजिर खिदमत है। क्या जवाब दिया? शराब बुझाने वाले वो नबली कच्ची करने वाले और होते हैं, सियाही लश्कर बढ़ाने वाले और होते हैं, चराग बुझाने वाले और होते हैं। इमाम ने कहा मुझे जिंदा और बेदार दिल चाहिए था, घोड़ा और नेजा मुझे चाहिए। और ये बहुत बड़ी आजमाइश की घड़ियां होती हैं, बहुत अल्लाह ऐसी आजमाइश मेरे और आपके ऊपर भी आ सकती है। ये दुश्मन अलगैर नहीं था, अगर दुश्मन अलगैर होता तो लश्कर उम्र के साथ में नजर आता, ऊपर छोड़ के जो भाग के जा रहा है, यानी इसका मतलब ये दुश्मन नहीं है, लेकिन मुहिब भी अक्ल की हद तक मानता है, सोच और फिक्र की हद तक मानता है कि ये हक है वो बातें हैं, लेकिन दिल में मोहब्बत हुसैन की तेरी का चराग रोशन मोहब्बत नहीं थी, मानता था कि ये ठीक है वो गलत है, और इसलिए गलत वालों उनके साथ शामिल नहीं हुआ, लेकिन इनके साथ भी शामिल घोड़ा मेरा दे मुझे घोड़ा और नेजा नहीं चाहिए। बालों का मेरी और आपके साथ भी यही सूरत हाल हो सकती है, हम देख न्याज की देख लें, हम न्याज की देख दे लें, हम एक मजलिस का इंतजाम कर लें, हम अपने घर से एक अलग इलामत करवा लें, इस किस्म का काम कर लें, बालों का दिमाग कहते मुझे तुम्हारे अलग इलामत करवाने की जरूरत नहीं, अब तो मैं नहीं कर रहा हूं, अलग इलामत होने चाहिए जितने ज्यादा उतना अच्छा है, लेकिन बाद हालात और वाकियात का तकाजा जो होता है वो कुछ और होता है, वो नेजा दे रहा है ना अपना, यानी एक जंगजू आदमी के लिए, एक बहादुर आदमी के लिए हथियार हथियार मर्द का जेवर होता है, हथियार मर्द का जेवर होता है, खासतौर पर उस दौर में वो अपना जेवर दे रहा है, अपना मर्द का तेज रफ्तार तरीन घोड़ा दे रहा है, बहुत कुछ कुर्बानी दे रहा था, लेकिन इमाम ने कहा मुझे ऐसी कुर्बानी नहीं चाहिए, इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे घोड़े और नेजे की जरूरत नहीं है। जिस जिनकी दिलों में मोहब्बत होती है वो समझ लेते हैं, उन्हें पता होता है कि इस वक्त हमें क्या करना है, इस वक्त घर से अलग बरामद करवाना है या इस वक्त खून देना है, इस वक्त एक सत्य अदा बचानी है या इस वक्त जान कुर्बान करनी है, वो हालात वाकत के जिस तरह तकाजा होता है उस तरह से चलते हैं। खुद मैदान करबला में जब मेरे और आपके मौला ने सलासा बुलंद किया, मुस्तहक है जब आप हालत इस्तराब में हो तो बुलंद टेढ़े पर टेढ़े पर जमीन से जो थोड़ी ऊंची जगह हो उधर जाके परवरदिगार को पुकारे और दुआ करें आपकी, तो दो तीन अपराध ऐसे थे जिन्होंने जब फरजंद जानात के इस्तराब सुना तो वो एक बुलंद टेढ़े पर करबला में बुलंद टेढ़े पर चढ़ गए और परवरदिगार की बारगाह में दस्त दराज करके दुआ मांगना शुरू कर दिया, पाने वाले रसूल के बेटे की मदद करना, पाने वाले जारा के बेटे की मदद करना, दुआ कितनी बड़ी इबादत है, दुआ बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन लानत हो ऐसी दुआ पर, दुआ कितनी बड़ी इबादत है लेकिन बाकी लानत हो ऐसी दुआ पर, इमाम वक्त का इमाम बुला रहे आओ मेरी मदद करो, और हम बन के इमाम की दुआ करना शुरू कर दें। इमाम कह रहे आओ मेरा साथ दो और हम इमाम की मदद की दुआ करना शुरू कर दें। हर चीज इसके मुकाम है, जिस दिल में मोहब्बत होती है उसे उस दिल को उस शख्स को इमाम को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इत्तला उस तक पहुंचनी चाहिए, बस उस तक इत्तला पहुंचनी चाहिए, फिर देखिए वो किस तरह से हबीब इब्न मुजाहिद मान के मैदान कर रहा है, फिर किस तरह से मुस्लिम ने औसदा मान को मैदान कर रहा है। ज़ुहैर इब्न कैन जिसके दिल में मोहब्बत थी, अगर ये कुछ और भी चक्कर था लेकिन ये मोहब्बत भी थी और ये मोहब्बत उसके मुकाबले में गालिब आ गई जब दावत मिली और थोड़ा सा शिशुपान के शिकार हुआ और बीवी ने गैरत दिलाई तो फिर किस तरह से इमाम के साथ आपके सामने। करबला एक बहुत बड़ा दर्श है मोहब्बत परवरदिगार आलम का, और जितनी ज्यादा मोहब्बत हमें मैदान करबला में खुदा के साथ नजर आती है उतनी आपको कहीं और नजर नहीं आई। अगर कुछ शिक्षक जिसके बाद आज तक हमें कुर्बानियों के सिलसिले नजर आते हैं तो ये सारे करबला की देन, ये सारे करबला की देन है, यानी ये सारी उसी मोहब्बत की रोशन किरणें हैं जो आज भी हमें नजर आ रही है। अगर करबला है इमाम ने ये मोहब्बत के चिराग रोशन नहीं किया होता तो ये मोहब्बत हमारे दिलों में इस तरह से ना होती। खुदा को मानते सारे मानते नमाजें पढ़ते रोजे रखते इबादत करते नए काम करते अमर बिलमारूफ करते ना ये करते सारे काम करते, लेकिन जब मुश्किल आती दीन को छोड़ देते, जब मुश्किल आती दीन को छोड़ देते। जैसा कि उस 61 हिजरी में यही काम हुआ, एक दुनिया मुसलमान थी, एक दुनिया मुसलमान थी और सारे वालिवाद इस्लामियों को एग्जाम देते थे, सारे वालिवाद इस्लामियों को एग्जाम देते थे, लेकिन जब दीन पर मुश्किल आई, जब जान खतरे में नजर आई, माल खतरे में नजर आया, वतन खतरे में नजर आया, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास यही नमाज रोजा हमें लिए जितनी दीनदारी हमारे लिए काफी है, बाकी जो दीन में जाना है तो कुछ और जाए हम जाने के लिए तैयार। इमाम ने बताया कि देखो जब दीन खतरे में ना हो, बड़ा खूबसूरत दर्श किया, जब दीन खतरे में ना हो तो जाओ हज करो, इबादत अंजाम दो, इंसानी जो भी तुम्हारी इबादत है वो अंजाम दो, जब दीन खतरे में ना हो तो जाओ मीना में जाके बकरे और भेड़ और ऊंट और ये जगह करो कुर्बानी हो, लेकिन जब दीन खतरे में हो तो फिर मीना में जाने की जरूरत नहीं है, उधर जाके बकरे और भेड़ जमा करा करके कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैदान का गुलाम है और वहां आकर अपने बेटों को अपने भाइयों को अपने साहब को और अपने आप को जिला करना चाहिए। जी दर्श ने कहा से मिला और ये सब कुछ उस मोहब्बत की देन है जो मोहब्बत इमाम हुसैन आज मुकाम अलैहिस्सलाम के दिल में जगमगा रही थी और फिर जो उनके साथ शामिल हो जिस तरह थे कश्तियां चलाने वाले और होते हैं और चराग बुझा बुझा के अपने से भेजने वाले दूर करने वाले और जिन्हें अपनी मोहब्बत की यकीन होता है वो ये नहीं कहते अपने सिपाहियों के लिए कश्तियां चला दो ताकि वापसी की उम्मीद खत्म हो जाए और फिर दिलेरी के साथ बढ़े, वो कहते नहीं जिसमें जरा बराबर भी जिसकी मोहब्बत में कमी देती है वो शक चला जाए, हमें ऐसे नहीं चाहिए जिनके दिल में खुदा की मोहब्बत है और राम जिनका बदल आप भी है, यानी दिल में खुदा की मोहब्बत के साथ साथ दुनिया की मोहब्बत है, जान की मोहब्बत है, अहल वयाल की मोहब्बत है, जो मुकाबले में आए मोहब्बत होना कोई हरज नहीं है, माल के साथ मोहब्बत होना, घर वालों के साथ मोहब्बत होना ये कोई हरज नहीं है, लेकिन जब खुदा के मुकाबले में आ गए तो ये सारी मोहब्बतें खत्म हो जानी चाहिए। जिसके दिल में जरा बराबर भी ना खालसी पाई जाती है, इमाम चेक कर रहे थे, दुनिया को दिखा रहे थे कि करबला में जो मेरे साथ आए हैं ये अपनी मोहब्बत में खालिस है, इतने चराग गुजार भी दे तो कोई उठ के जाने वाला नहीं है। सवाल ये आज अगर वक्त हुसैन चराग बुझाए, क्योंकि वो लश्कर इकट्ठा करना, बंदे इकट्ठे करना और अफराद की कुवत बढ़ाने के काय नहीं है, उन्हें खालिस अफराद चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो मोहब्बत परवरदिगार आलम के साथ मुनव्वर हो और दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो, और कुर्बानियों का सिलसिला छोटी छोटी कुर्बानियों से शुरू होता है, बड़ी बड़ी कुर्बानियों तक पहुंच जाता है और हर एक की अपनी अपनी कीमत होती है, किसी की कुर्बानियों का सिलसिला कहीं जाकर रुक जाता है, किसी की कुर्बानियों में कहीं जाकर। इमाम ने चराग बुझा के बताया देखो ये वो लोग हैं, ये ऐसे खालिस लोग हैं, ये ऐसे परवरदिगार आलम से मोहब्बत करने वाले हैं कि इन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, इन्हें अपनी आखिरत दुनिया की कोई परवाह नहीं है, आल आयाल की कोई परवाह नहीं है। ये अपना सब कुछ लुटाने आए हैं, जिस तरह मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने आया हूँ, दीन बचाने आया हूँ, इसी तरह ये भी मेरे साथ अपना सब कुछ लुटाने और दीन बचाने के लिए आया। एक बहुत खूबसूरत जुमला इस करबला के वाकियात की तालीम में अल्लामा अली नकवी नकल फरमाया करते थे कि जिंदगी जितनी हीच और पूछ शब आशूर को मैदान करबला में नजर आई, इतनी हीच और पूछ ना उससे पहले कभी नजर आई ना उसके बाद कभी नजर आई। इमाम चराग जान के जिंदगी बांट रहे थे, जो जिंदा रहना चाहता है चला जाए, चराग जान की जिंदगी बांट रहे थे, लेकिन हर कोई उस जिंदगी को थोक रहा है। ऐसे तो बोला आपके बगैर जो जिंदगी उस जिंदगी को हम क्या करें, हम तो 100 बार ही हमें जिंदगी मिले, हम तो 100 बार वाले मिलने वाली 100 बार जिंदगी मिलेगी वो सारी आपसे कुर्बान करना चाहते हैं, एक जिंदगी है ये, एक भी आपके कुर्बान न करें अपने आप को बचा के चले जाए, हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। चराग बुझाने का मतलब ये था कि इमाम जिंदगी बांट रहे थे, जिसको जिंदगी चाहिए मैं दे रहा हूँ, ये लो जिंदगी ये लो, जिसके पास जाते हैं वही कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। और तो 13 साल का बच्चा है तो पीछे अदर साइड में पीछे बैठे हुए थे, घुटनों के बाद वो तो उसके अपना चेहरा दिखा रहे थे, जब सारे अकीम की मोहब्बतों का इजहार कर चुके तो फिर इमाम ने जो शहादत के यानी गिनना शुरू किया था, तुम भी शहीद हो जाओगे, तुम भी शहीद हो जाओगे, तुम भी शहीद हो जाओगे, हर एक को मौत की खबर सुना रहे थे, कल तुम भी मार जाओगे, तुम भी मार जाओगे, वो नन्ना मासूम बच्चा घुटनों के बाद उठ उठ के अपना चेहरा दिखा रहा, यानी अपनी एक उस जोश और अपनी उस रगबत का इजहार कर रहा था कि मेरा नाम कब लेंगे, मेरा नाम कब है। मैं ये पढ़ना नहीं चाहता था ये वाक्य, लेकिन अब ना जाने क्यों एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है, जिंदगी कभी इतनी सस्ती ना हुई जिंदगी का बदलाव में नाम मुफ्त में इसको लेने के लिए तैयार होती है। वो मासूम बच्चा जब उसका नाम ना आया, अब तबीयत इंसानी ये है, फितरत इंसानी ये है, अगर फर्ज करें किसी वाले से खबर की जाए कल इन बैठने वालों में फुला फुला अफराद इस दुनिया से चले जाएंगे और फुला फुला बैठ जाएंगे, आम तबीयत जो है आम तबीयत दीन से हटकर जिनको खबर मिलेगी कि हम चले जाएंगे उनके चेहरे उतर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, और जिनको खबर मिलेगी कि वो बच जाएंगे वो खुश हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं। यहाँ मामला बरअक्स है, जिस जिसको खबर मिलती गई उसका चेहरा चलता चला जाए, और जिस 13 साल वाले बच्चे को खबर न मिली उसकी आंखों में आंसू आ गए कि बोला था मेरा शहीद होने वालों में नाम नहीं, मेरा ना शहीद हो जाने वालों में नाम नहीं है। क्या फरमाया मेरे मौला ने, मेरे मौला ने कहा कासिम तुझे बोलूं कल तेरा नन्ना भाई तो इसका भी शिकार हो गया। अपनी शहादत की खुशखबरी सुनने के लिए जब उस बच्चे ने ये सुना कि कल उसका भाई असगर भी शहीद हो जाएगा, वो अपनी शहादत की खुशखबरी को भूल गया और बड़ी बेचैनी और बेकरारी के साथ कहता है से क्या वो मरहूम साहिबों में गुस्सा है। उसने गवारा न था जब उसने ये सुना ना कि 6 महीने का असर ये तो मैदान में जाने के काबिल नहीं, ये तो चल करने के काबिल नहीं, ये तो चल नहीं सकता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, अगर कल शहीद हो जाएगा तो उसका मतलब की जाएगी वो मरहूम खयाल कर गुस्साएंगे। कासिम अपनी शहादत की खुशखबरी भूल गया, जैसे इतिहास बिना बर्दाश्त नहीं कर सकी, हर क्या सुकून है तो बयान ने क्यों उस कासिम के गंदे से दिल को रखने के लिए ये न बताया कि शाम में गरीबा में क्या होगा, इमाम ने कहा नहीं बेटा मैं वो तेरे भाई को पानी पिलाने के लिए ले रहा कासिम तुम होते वो मंजर देखते जब तेरा चचा शहीद हो गया, जब आले हरम ने सुलझना के चाकू की आवाज सुनी, खैमे का पर्दा जनाबे सकीना ने हटाया, क्या मंजर नजर आया, सुलझना की हुई एक बर्फ को झुकी हुई है, बातें कटी हुई है, बदन में तीर पैवस्त है, जनाबे सकीना कहती है या जवाहर अभी हर सुबह अभी हमको तेरा निशाना
मेरे पापा के घोड़े मैं कहीं क्या किया देखकर समझ गई मेरे पापा के साथ क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर खुशी हूँ जब मेरा पापा ख्याम से गया था तीन दिन का भूखा हो गया था क्या जानवरों ने सिवा करने से पहले मेरे पापा को पानी दी। तभी तो अगर बात यही तक रहती तो हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन मैं कैसे कहूँ 13 साल के शहजादे इसके बाद वो हुआ जिसका तुझे कसूर भी गवारा न था, सहराए करबला में वो मनहूस आवाज बुलंद हुई लूटो तो बना के ले चलो। अजीब अल्लाह ने जब पूछा बोला आप कब तक रोएंगे, बड़े बड़े अदादार आपने देखे होंगे, आप खुद भी माशा अल्लाह बड़े अदादार हैं, कितने ऐसे मोमिन और मोमिनात हैं, अगर मंजूरे कर बुला का नाम सुनने पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्होंने ये वाकयात देखे नहीं सिर्फ सुने हैं, और वो अभी तकरीबन 1400 साल बाद अजीजों वो इनाम कैसे भूल सकता है जिसकी निगाहों के सामने ये सब कुछ होता रहा है। जब पूछने वाले ने पूछा बोला आप क्यों इतना गिरिया फरमाते हैं, आपका ये गिरिया कब रुकेगा, मानने वालों के लिए बड़ा सत्य है, जब अपने इमाम को मिलने आए और किसी भी हवाले से करबला वालों का जिक्र आ जाए इमाम रोना शुरू हो जाए, देखने वाला बंदा न कर सका बोला आपका ये गिरिया कब रुकेगा, आपका ये गिरिया कब तमाम होगा, आवाज दी याकूब का एक यूसुफ था, याकूब का एक यूसुफ था और इनके नबूवत से जानते कि देखे देखा देता है, लेकिन इतना रोए तो कुरान को भी कहना पड़ा वो मुजद्दद आईना हुस्न के हुस्न से, फिर आगे यूसुफ से याकूब इतना रोए कि याकूब की आंखें सफेद हो गई। ऐ सवाल करने वाले मैंने 18 मरतबे यूसुफ करबला की उस गर्म रेत पर बेगौर तमन देखे हैं, मेरा गिरिया कैसे रुक सकता है, आवाज दी बोला शहादत तो आपकी मीरास है, आप तो वारिस हैं, आपके चचा हजरत जाफर तैयार शहीद हुए, आपके चचा हजरत हमजा शहीद हुए, आपके दादा हजरत अली अब्दुल तालिब शहीद हुए, शहादत तो आपका हिस्सा है, अब आपकी ऐसे की बात करने वाले तुझे इंसाफ नहीं किया, शहादत तो हमारा हिस्सा है, लेकिन फुफियों के साथ बहनों के साथ अली की बेटियों के साथ और कभी बेहका कभी ऊफा और कभी शाम, कभी इस बाजार कभी उस बाजार कभी इस दरबार कभी उस दरबार, अरे 13 साल का कासिम बर्दाश्त नहीं कर सकता, दुर्गा तो चाहते में सब कैसे बर्दाश्त किया, जब पानी पे नजर पड़ती थी कहते थे कई पाचे बुलवा वो पुतला भी अच्छाना, ऐ बाबा हुसैन तेरा बेटा किस तरह पानी पिए जबकि तुझे प्यासा शहीद कर दिया गया, जब खाना लाया जाता कई बार आपको वो पुतला भी जाया, ऐ बाबा तेरा बेटा कैसे खाना खाए तुझे भूखा शहीद किया गया। अजीजों अजीब की मालूम है अगर कोई अदादार है तो सैयद सज्जाद है, अगर कोई अदादार है वो ज़ैनब आलिया है, जिस तरह आप जना की छवि बनाते हैं, जिस तरह आप अलग हजरत अब्बास की छवि बनाते हैं अजीजों इसी तरह हम भी उन अदादारों की छवि है, वरना अगर अजीजी अदादार है तो यही लोग हैं, और काश अगर इनको उस वक्त रोने दिया गया होगा तो शायद हमारा गिरिया इतना न होता, अरे जिसको रोने के लिए जैनब उम्मे कुलसूम जैसी पहने हो, जिसको रोने के लिए फातिमा और सकीना जैसी बेटियां हो, जिसको रोने के लिए सैयद साबरी सैयद सज्जाद जैसा बेटा हो, लेकिन किसी मुकाम पर रोने न दिया गया। उधर की आंखों में आंसू आते थे, दादी आने बरसना शुरू हो जाते। अजीजो ऐसी ऐसी मुश्किल घड़ियां भी आई, ऐसे ऐसे लम्हात भी आए कि बाहर उलमा फरमाते हैं इमाम सज्जाद जैसी शख्सियत बाहर के वायात मिलता है। एक बार पुकार कर कहा, ऐ काश मेरी माँ ने मुझे न जला होता, ऐ काश मैंने शाम का सफर न किया होता। जब मेरे मौला से पूछने वाले ने पूछा, मौला आप पर सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ आई, तीन बार कहा अच्छा। अजी तो उसकी वजह बयान करते हुए चंद उपहार बताई है, और उपहार पर से एक वजह ये बताई। मौला फरमाते हैं, शाम में हमें बाजार शाम में उस जगह पर एक बुलंद जगह थी, सीढ़ियां तुम्हार जगह थी, हमें उस जगह पर जाकर खड़ा कर दिया गया। अली की बेटियां, अली की पोतियां, आले रसूल और मैं उनके साथ खड़ा था। वो जगह कौन सी जगह थी? मौला फरमाते हैं, वो जगह थी जहाँ पर तुम और जेलों से लाए जाने वाले गुलामों और गरीबों को खड़ा किया जाता था। खरीदार वहाँ पर उसके तो सामने खड़े होकर अपने लिए गुलाम और गरीब पसंद करते थे खरीदने के लिए। ऐ हमारे चाहने वालों, हमें उन सीढ़ियों पर खड़ा किया गया और शाम वाले क्या कह रहे थे, ये माजी का घराना है।
हमारी आने वाली नस्लों को दर्जा में क्या
اہل بیت علیہ السلام کا وقار کر پر خدا بننے کی توفیق عطا فرما، آنے والے ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، آنے والے اسلام مسلمین اور ملک عزیز کی خدمت کرنے والوں کی نصرت فرما، اسلام مسلمین اور ملک عزیز کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مومنین مومنات عزاداران سے شہدا دنیا میں جانے بسنے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوص حاضرین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء کا سایہ قائم و دائم فرما، ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی آبادی کے ساتھ ہمارے محبوب امام علیہ السلام کی قبر میں تعظیم فرما، ان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کی دعائیں ہم سب کے شامل حال فرما، ان کے عظیم انقلاب کی راہیں ہم سب کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما،